उत्पत्ति के शुरुआती अध्याय दुनिया में पाप की बढ़ती शक्ति को दर्शाते हैं। बुराई का ये ज्ञान जो शुरुआत में इतना आकर्षक लग रहा था, वो एक नष्ट करने वाली शक्ति और एक कड़वा शत्रु निकला। आदम और हव्वा के पाप उनसे खुद जुड़ गए थे, और जब केन दुनिया की पहली संतान पैदा हुई तो ये पाप पहले से ही उससे जुड़ा हुआ था। सत्र 4 प्रलय। अपनी बाइबल में उत्पत्ति 11 खोले। बस एक और धक्का और वो बाहर था, और एक क्षण बाद शोर शुरू हो जाता है, जैसे ही दुनिया की पहली संतान ने घटनास्थल पर अपने आगमन की घोषणा की। उसकी मां के पास कोई दाई नहीं थी, उसके पास उसकी मदद के लिए सिर्फ उसका पति था, और उसको जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे क्या करना है। इसके बारे में जरा सोचे, न ही हव्वा को कोई अंदाजा था, परंतु किसी तरह परमेश्वर की दया से वे दोनों इसे कर पाए, और अब वो अपने नन्हे पुत्र केन को अपनी बाहों में ले सकती थी। हव्वा ने अपने पुत्र के जन्म में परमेश्वर की आशीष को देखा होगा। आखिरकार परमेश्वर ने कहा था कि स्त्री की संतान के माध्यम से ही सर्प के सिर को कुचला जाएगा। शायद उसने अपने पुत्र की आंखों में देखकर विचार किया होगा कि वो किस प्रकार बुराई की धारा को उल्टा सकता है और स्वर्ग में उनकी वापसी करा सकता है। यदि उसके विचार वो थे तो वो बहुत निराश हुई होगी, क्योंकि जिस पुत्र की मासूम प्रतीत होती आंखों में वो देख रही थी, वो दुनिया का पहला हत्यारा निकला। परिवार को बुराई से छुड़ाने वाला होना तो दूर, केन वो था जिसने दुनिया को बुराई की एक नई गहराई और अपने माता पिता के दिलों को दुखाने की एक नई गहराई का परिचय दिया। उत्पत्ति 4 बताती है कि किस प्रकार से केन एक क्रोधित युवा बन गया। परमेश्वर के खिलाफ लड़ने का एक आवेग पहले से ही उसके अंदर था, और अपने भाई को परमेश्वर की आशीष का आनंद लेते देख उसका क्रोध और भी बदतर हो गया। केन ने अपने भाई से कहा, चलो बाहर मैदान में जाते हैं। वे दोनों बाहर चले गए, और जब वे वहां अकेले थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। बुराई एक नई गहराई तक पहुंच गई थी, और पहली दफा हिंसा भड़क उठी। हमारे लिए ये सोचना स्वाभाविक है कि यदि हम अपने बच्चों के लिए एक प्यार भरा माहौल प्रदान करते हैं, उन्हें एक अच्छी शिक्षा देते हैं और उन्हें गिरजाघर ले जाते हैं, तो परिणाम ईश्वरीय बच्चे होंगे। परंतु जैसा कि दुनिया के पहले माता पिता ने पाया, यह हमेशा ऐसा नहीं होता। जब आदम और हव्वा ने अंत में समझा कि बुराई एक बढ़ती हुई शक्ति है, तब वे यहोवा से प्रार्थना करने लगे। यह पहली प्रार्थना थी। शायद आप अपने दर्द में भी प्रार्थना की वास्तविकता को खोज पाएंगे। इसके आगे की पीढ़ियों में पाप प्रचंड हो गया। पृथ्वी पर मनुष्य की बुराई महान हो गई, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। थोड़े ही समय में हम बगीचे में अवाग्य के एक कार्य से हिंसा के ज्वार तक गिर गए, जो पृथ्वी को बहा ले गया। हमें यह बताना तो दूर कि मानव स्वभाव बेहतर होता जाता है। जैसा कि हमारी संस्कृति विश्वास करना पसंद करती है, बाइबल हमें बताती है कि जैसे जैसे हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे हम और भी बुरे हो जाते हैं। परमेश्वर ने बुराई की व्यापक शक्ति पर लगाम लगाने के लिए बाढ़ भेजी। ये बाढ़ एक विनाशकारी प्रलय थी जिसमें परमेश्वर ने वापस से पूरी मानव आबादी को काट कर सिर्फ एक परिवार के 8 लोगों में कर दिया, जिन्हें जहाज के माध्यम से बचाया गया था। नूह के पास एक अद्भुत अवसर था। जैसे ही वो जहाज से एक नए आराम में निकला, एक नए वातावरण में जिसमें ना तो कोई पुराना हिसाब बराबर करना था और ना कोई दुश्मन लड़ने के लिए था, परंतु नूह पाप के बीज को अपने साथ नई दुनिया में लेके आया और थोड़े ही समय में वह नशे में था और कुटिलता का बीज उसकी एक संतान में बढ़ रहा था। जब एक पादरी और उनकी पत्नी लंदन में रहते थे तो उन्होंने अपने बगीचे में लता से लड़ती हुई 16 साल बिताए, जो एक तेजी से बढ़ती हुई बेल की तरह जंगली घास होती है जो उनके गुलाबों के चारों ओर घाफ कर देती थी। ये जंगली घास उनके बगीचे की मिट्टी में गहराई से जमी हुई थी और चूंकि वह उनके पौधों की जड़ों से जुड़ी हुई थी तो इसे हटाना असंभव था। सबसे अच्छा वो ये कर सकते थे कि इसे वापस काट दे और इसे नियंत्रण में रखने की कोशिश करे। पाप ऐसा ही है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं में से किसी एक का उल्लंघन करना चुनते हैं तो आप जीवित बीज बोते हैं और वो बढ़ता है। शैतान आपको बताता है कि अनुभव आपके क्षितिज को व्यापक करेगा, परंतु वास्तविकता यह है कि पाप आपकी आत्मा में भयानक युद्धों को स्थापित कर देगा। पहली बात बाइबल हमें पाप के बारे में यह कहती है, वहां मत जाओ, बुराई से दूर भाग जाओ, इससे जितना हो सके उतना दूर भाग जाओ, क्योंकि ये एक बढ़ती हुई शक्ति है। अपने आप को उन घावों और निशानों और लड़ाइयों के लिए तैयार ना करे जो शायद वर्षों से आपके साथ है। शायद तुम सोच रहे हो, काश मैंने इसके बारे में सालों पहले सोचा होता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कुछ चीजें की आदतें डाल ली है और अब वे मेरी आत्मा के भीतर युद्ध की तरह है। यह एक महान प्रतिक्रिया है। आप उस जंगली घास के बारे में ईमानदार है जिसे आपने बढ़ने की अनुमति दी है और आप नहीं चाहते कि वे आपके जीवन पर हावी हो जाए। अब वो समय है कि आप वापस उनसे लड़े और आप कर सकते हैं उस शक्ति के द्वारा जो परमेश्वर ने आपको दी है। परमेश्वर उस जंगली घास को अपने बगीचे पर काबू करने की अनुमति नहीं देंगे, इसलिए वो उसे वापस काट देते हैं। यदि परमेश्वर ने इस तरह से न्याय नहीं किया तो पाप हर अच्छी चीज को नष्ट कर देगा, इसलिए परमेश्वर इसे वापस काटते रहते हैं। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की अवज्ञा की, इसलिए परमेश्वर उन्हें बगीचे से निष्कासित करके उनके पाप की प्रगति की जांच करते हैं। केन पहला कातिल बना, इसलिए परमेश्वर ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। नूह के समय में बुराई बहुत अधिक बढ़ गई तो परमेश्वर ने इसे वापस बाढ़ के माध्यम से काट दिया, परंतु पाप निरंतर बढ़ता रहा और बहुत समय नहीं हुआ था कि बाबिल के लोगों के एक समुदाय ने परमेश्वर के प्रति अपनी अवज्ञा व्यक्त करने का एक नया तरीका ढूंढा। वक्त के साथ एक नई तकनीकी विकसित की गई थी जिसने संभावनाओं की दुनिया खोल दी। ईंटों द्वारा एक शानदार परियोजना बिठाई आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे और इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम को सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। इस इमारत के साथ समस्या इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसका उद्देश्य था जो मानव महानता का प्रचार करना था। लोग अपने लिए नाम बनाना चाहते थे और अपनी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना चाहते थे। एक बार फिर हम परमेश्वर के सिंहासन के लिए लोभी थे। परमेश्वर ने मनुष्य के शहर के निर्माण को देखा और उसे एक निश्चित स्थिति तक आगे बढ़ने दिया और फिर उन्होंने इसे वापस काट दिया। यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है और ये केवल शुरुआत है कि ये क्या करेंगे और जो कुछ भी वे करने का प्रयास करेंगे वो अब उनके लिए असंभव नहीं होगा। आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। कल्पना कीजिए कि आप पिछले 2 महीनों से बाबुल की इमारत की 21वीं मंजिल पर एक ही आदमी के साथ काम कर रहे हैं। एक दिन जब आप उसके पास पहुंचते हैं और उसे नमस्कार करते हैं तो वो आपके ना समझ में आने वाली आवाज के साथ आपको जवाब देता है, इस आदमी को क्या हो गया है। आप जल्द ही जान जाते हैं कि आपके दल के अन्य साथी भी अस्पष्ट भाषा में बात कर रहे हैं और आपको आश्चर्य होता है कि जैसे ये किसी तरह का मजाक है। आखिरकार आपकी राहत के लिए आपको इमारत स्थल पर कोई और मिलता है जो आपकी तरह बोलता है तो आप उससे कहते हैं, ये बाकी के लोग पागल है, चलो यहां से चलते हैं। तो आप दोनों को कुछ और लोग मिल जाते हैं जो आपकी तरह बात करते हैं और आप एक साथ एक नए समुदाय की स्थापना करने के लिए निकल जाते हैं जहां हर कोई एक ही भाषा में बात करते हैं। परमेश्वर ने मानव भाषा को भ्रमित करके मनुष्य की बगावत को वापस काट दिया और इस तरह यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। बाबुल को छोटे परिवारों के समूहों द्वारा छोड़ दिया गया था जो हर दिशा में आगे बढ़ रहे थे और उनके दिलों में भविष्य के संघर्ष के बीच पहले से ही बोए जा चुके थे। विडंबना यह है कि जितना मनुष्य ने बिखरने से बचने का प्रयास किया वही चीज परमेश्वर ने उनके साथ करी और उन्होंने ये बुराई के अग्रिम को नियंत्रित करने के लिए किया। जब परमेश्वर पाप को काटते हैं तो वो हमेशा अपने अनुग्रह के लिए जगह बनाते हैं। आदम और हव्वा को बगीचे से बाहर निकाल दिया गया था परंतु परमेश्वर ने एक उद्धारक का वादा किया। केन ने अपनी भाई की हत्या करी परंतु परमेश्वर ने एक और पुत्र दिया शेत जिसने आशा का एक नया मार्ग शुरू किया। बार ने सभी मानव जीवन को नष्ट कर दिया परंतु परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जहाज में सुरक्षित रखा। इसलिए जब परमेश्वर ने बाबुल इमारत पर प्रलय लाई तो हम ये जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपने अनुग्रह की पहल करेंगे। बाबुल की इमारत की कहानी के अंत में हमने वंशावली पढ़ी जो शेम के साथ शुरू हुई और तेराह अब्राहम के पिता के साथ समाप्त हुई। परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रकट हुए ठीक उसी तरह जिस प्रकार उन्होंने आदम को बगीचे में दर्शन दिया था। उस समय तक अब्राहम परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसका परिवार दूसरे देवताओं की आराधना करता था परंतु परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों को आशीर्वाद देने का वचन दिया और उन्होंने वचन दिया कि उसके वंश के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर हर राष्ट्रीय धन्य हो जाएगा। बाकी का पुराना नियम इस परिवार के वंश का अनुसरण करता है, जो हमें मसीह तक ले जाता है, जो क्रूस पर चलाए गए और तीसरे दिन जी उठे। 40 दिन बाद वो स्वर्ग में चढ़ गए। फिर पेंटेकुस के दिन परमेश्वर ने बाबुल को औंधा दिया। जब परमेश्वर की आत्मा आई तो प्रेरितों ने खुद को उन भाषाओं में अनायास बोलते हुए पाया जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सीखा था, ताकि दुनिया भर के लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को अपनी भाषा में सुन और समझ सके। क्या आप इसका अंतर देखते हैं? बाबुल में भाषा परमेश्वर का न्याय था, जिससे भ्रम पैदा हुआ और लोग बिखर गए। पेंतेकुस के दिन में भाषा परमेश्वर की एक आशीष थी, जिससे समझ पैदा हुई और लोग इकट्ठे हुए। परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को इकट्ठा करने की कहानी प्रकाशित वाक्य बाइबल की अंतिम पुस्तक में समाप्त होती है, जहां हर जनजाति और राष्ट्र और भाषा के लोगों की एक विशाल भीड़ पाई जाती है, जो एकजुट हो जाते हैं जैसे ही वे मसीह की आराधना करते हैं, जिन्होंने उन्हें मुक्ति दिलाई और उन्हें एक साथ लाया। उद्धार हमारे परमेश्वर का है, जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का है। आइए हम देखें आज हमारे लिए क्या प्रकाशित हुआ। परमेश्वर ने मनुष्य के बढ़ते विद्रोह पर रोक लगाने के लिए मानव जाति को विभिन्न भाषाई समूहों में विभाजित किया। ये रोक उल्लेखनीय रूप से प्रभावी रही है। मानव इतिहास के दौरान राष्ट्रों को एक साथ लाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, परंतु कोई भी सफलता हमेशा सीमित और अल्पकालिक रही है। परंतु परमेश्वर यीशु मसीह के माध्यम से सभी देशों के लोगों को एक साथ ला रहे हैं। स्वर्ग में उन सभी बाधाएं जिसने पूरे इतिहास में लोगों को विभाजित किया है, वर्ग, जाति और भाषा, पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और परमेश्वर अपने लोगों को पुकारते हैं ताकि वे अब गिरजाघर में एकता को व्यक्त करना शुरू कर दें।